प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 5 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 39 युवा साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इन मित्रों के दोस्तों नाम हैं दीपक कुमार जो कुम्हेरी ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं, महेंद्र सिंह आप बंगलुरु कर्नाटक से हैं, आदर्श कुमार शाह कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, चेनवी अग्रवाल पत्थलगांव छत्तीसगढ़ से हैं, अमरजीत कौर जलंधर पंजाब से, प्रिया मिश्रा कोतमागांव जिला शहडोल मध्य प्रदेश से, गौरव कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, मनीष चौरसिया मुस्तफाबाद जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश, दिनेश कुमार वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, नरेंद्र वर्मा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप सिंह गांव नागला भोगली जिला आगरा उत्तर प्रदेश, फरहीन बानो भदोही उत्तर प्रदेश, नीलेश कुमार मौर्य भिंड मध्य प्रदेश, कुलदीप विजोरिया भिंड मध्य प्रदेश, मनीष भारद्वाज आगरा उत्तर प्रदेश, शेष राव देवराम मोहरले नागपुर महाराष्ट्र, प्रदीप कुमार साहू कसडोल छत्तीसगढ़, दीपा बैगा शहडोल मध्य प्रदेश, विनीत शुक्ला गांव महसोन जिला बस्ती उत्तर प्रदेश, आदर्श पांडे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, राजू पाठक गांव सिंघही जिला मुजफ्फरपुर बिहार, अविनाश कुमार आपका भी गांव है सिंघही जिला मुजफ्फरपुर बिहार, विशाल कुमार आपका गांव है नरहन जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कृष्ण गोपाल जलोदिया आपका गांव है मोगरा राम जिला सीहोर मध्य प्रदेश, हर्षिता भगत मंडला मध्य प्रदेश, भूपेंद्र प्रताप सिंह केंडा डंड जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, निधि विश्वकर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश, मुकेश कुमार गुप्ता गांव पीपरी बुजुर्ग जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आयुष मिश्रा आरा बिहार, गौरंगा दत्ता गांव हुरा जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल, शैलेंद्र सिंह गांव घोघरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ज्योति कुमार यादव गांव चकियावा सिलौता जिला चंदौली उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार गांव लहुआरा जिला लखीसराय बिहार, अजय दद्दू चवन आपका गांव है गोंडवादी जिला अमरावती महाराष्ट्र, चतुर्भुज मीना आपका गांव है बासो खुर्द जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, आकाश नाग बिलासपुर छत्तीसगढ़, संध्या कुशवाहा नई दिल्ली, दुर्गेश कुमार मिश्रा देवरिया उत्तर प्रदेश और राजीव यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो दीपक महेंद्र आदर्श चेनवी अमरजीत प्रिया गौरव मनीष दिनेश नरेंद्र प्रदीप फरहीन नीलेश कुलदीप मनीष शेषराव प्रदीप दीपा विनीत आदर्श राजू अविनाश विशाल कृष्ण गोपाल हर्षिता भूपेंद्र निधि मुकेश आयुष गोरंगा शैलेंद्र ज्योति नीतीश अजय चतुर्भुज आकाश संध्या दुर्गेश और राजीव आप सभी युवा साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज मुझे इतनी संख्या में विद्यार्थियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है और उसका कारण आप जानते हैं कि इस बीच में उनका नाम हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो मैं एक बार फिर से चूंकि संख्या ज्यादा है तो आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको ये आश्वासन भी देता हूं कि हम सब मिलकर डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, बशर्ते कि आप करने के लिए अपने दिमाग, अपना दिमाग, अपने आंख, अपने कान और अपने पूरे के पूरी भावनाओं को खुला रखें, एक्शन में रखें, डेफिनेटली चीजें होंगी। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल और संघीय ढांचा, इस विषय पर बात करेंगे। और जहां तक न्यूज एनालिसिस का सवाल है, न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, इनफैक्ट न्यूज में भी हमारे राष्ट्रपति जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों से जो अपील की है कि वो संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम करें, वही मुख्य न्यूज भी थी और कोई खास न्यूज कल रही नहीं है। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति जी जो हमारे देश के सर्वप्रथम नागरिक होते हैं, वो साल में एक बार हमेशा राज्यपालों का एक सम्मेलन किया करते हैं। राष्ट्रपति भवन में वो सम्मेलन होता है, मैं तो उसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूं। उसमें हमारे राज्य के सभी राज्यपाल आते हैं और उपराज्यपाल भी आते हैं, और बकायदे राष्ट्रपति उसे संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और फिर गृहमंत्री भी संबोधित करते हैं, और फिर वो आपस में उनकी बातचीत होती है, डिस्कशन भी होता है, खासकर राज्यपालों की भूमिका को लेकर। उसमें देखें कि जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं राज्यपाल के संदर्भ में, कि राष्ट्रपति जी ने ये बात कही कि जो योजनाएं हैं राज्यपाल देखें कि कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सकता है, लोगों तक वो चीजें पहुंच सकती हैं। ये हमारे राष्ट्रपति जी की राज्यपालों से अपील रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील रही है कि जो हमारा संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हमारे राज्यपाल काम करें। मित्रों, इसमें जो दूसरा बिंदु है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए राज्यपाल काम करें, इस पर हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे, जो भी वक्त अभी हम लोगों के हाथ में है। और वो इसलिए भी कि यह जो टॉपिक है, ये मानकर चलिए कि आपके पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का या कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हॉट टॉपिक है। प्री की दृष्टि से तो नहीं, सामान्यतया प्री में इस तरह के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन मेंस में पूछे जाते हैं। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो कुछ एक दो साल के गैप के बाद सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ न कुछ इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आप देखें कि जो फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं और उसमें जो गवर्नर के रोल की बात की जा रही है, वो इनफैक्ट है क्या, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि शायद आप अपनी तरफ से भी गवर्नर की भूमिका को समझ पाएंगे, और जिस तरह की राजनीतिक स्थिति भारत में है और आगे भी जो आपको देखने को मिलेगी, उसका भी आप सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहां बताने जा रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं, मैं ये जानता हूं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रखा है, आप जानते फेडरल स्ट्रक्चर और गवर्नर के बारे में आपको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसकी जो बेस में वो बातें हैं जो आपको मूल्यांकन के लिए एक तरीके से क्षमतावान बना सकती हैं, कुछ उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, देखिए फ्रेंड्स, जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं, वो संघीय ढांचा क्या है? भारत जैसे बड़े देश में, खासकर अगर कोई देश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो वहां ये फेडरल स्ट्रक्चर ही सामान्यतया काम करता है। देखिए, अगर कोई छोटा सा देश है तो छोटे से देश में तो कोई बात नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर को लेकर के चल सकते हैं, हो सकता है कि वो केवल सेंटर का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि वहां केंद्र सरकार है और छोटे छोटी राज्य सरकारें भी हैं, जो कि पूरे देश की संस्कृति एक है, भाषा एक है, बहुत ज्यादा विविधता नहीं है, तो एक से काम चल जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी तरह की संस्कृति है, जिसकी इतनी जबरदस्त लंबी ऐतिहासिक विरासत है, तो बट नेचुरल है कि वहां आपको फेडरल स्ट्रक्चर लेकर के चलना पड़ेगा। अमेरिका का भी जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है। तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो हम संघीय ढांचा कहते हैं, तो संघ का मतलब हो जाता है केंद्र, तो शब्द से ऐसा लगता है कि बस केंद्र है, बस जो कुछ भी है वो केंद्र है, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ केंद्र नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि देश के मामलों को देखने के लिए एक केंद्र है और इसके बाद केंद्र से जुड़े हुए दूसरे अलग अलग राज्य हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि केंद्र, सर्वे सर्वा केंद्र, टॉप पर एक केंद्र है, जो खासकर ऐसे मामलों को देखता है जो राष्ट्रहित से जुड़े हुए मामले हैं, जिनके लिए राज्यों को अनुमति नहीं दी जा सकती या राज्य उनको देख भी नहीं सकते, जैसे मान लीजिए विदेश मामला या सेना। सेना और अगर आप विदेश मामले को देखें तो आप पाएंगे कि इसको आप राज्यों को कैसे सौंपेंगे। सेना एक होगी देश की तो केंद्र के अधीन होगी। ठीक इसी तरीके से जब हम विदेश नीति की बात करेंगे तो विदेश मंत्री भी आपको सिर्फ केंद्र में मिलेगा। बाकी आप देखिए शिक्षा मंत्री राज्यों में भी होते हैं, जिसे हम केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं। कृषि मंत्री केंद्र में भी होते हैं, कृषि मंत्री आपके राज्यों में भी होते हैं। गृह मंत्री केंद्र में भी होते हैं, गृह मंत्री आपके राज्यों में भी होते हैं, राइट। तो एक केंद्र है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों को देख रहा है, जिसमें हम समझते हैं कि नहीं, ये सारी शक्तियां, ये सारे मामले एक ही के पास होने चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा फिर राज्य है। तो ये जो राज्य हैं, ये राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है वो एक अलग बात है। जैसे भारत में राज्यों का निर्माण भाषा को आधार बनाकर किया गया है ना, एक भाषा बोलने वालों को एक राज्य। आपको मालूम है कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो भाषाई आधार पर हुआ है, और इसके बाद फिर राज्यों का विभाजन होता जा रहा है। जो बड़े राज्य हैं प्रशासनिक दृष्टि से, उनको और अच्छा बनाने के लिए छोटे बनाए जा रहे हैं, या और दूसरी दृष्टि से उनको विभाजित किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। तो हमारे पास राज्य है और हमारे पास केंद्र है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राज्यों को पूरी आजादी दी जा सकती है कि वो अपने मन से जो चाहें वो करते रहें, केंद्र अपना काम करे और राज्य अपना काम करे, क्या ये पूरी तरह से ये आजादी दी जा सकती है? या अगर केंद्र पर राज्यों का नियंत्रण हो कि ठीक है, राज्यों को कुछ मामलों में तो पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने ढंग से काम करें, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र को उन पर नियंत्रण रखना ही चाहिए ताकि जो हमारी देश की जो एकता है, जो एक स्वरूप है, वो बना रहे, कोई संकट इस पर ना आए। तो इसका मतलब है कि केंद्र का कुछ नियंत्रण राज्यों पर भी होना चाहिए, राइट। तो इसको अडॉप्ट किया गया कि नहीं, कुछ ना कुछ नियंत्रण तो होना चाहिए, राज्यों को बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती। तो अब सवाल है कि अगर केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण रखना है, अगर नियंत्रण शब्द हम न रखें, चलिए एक संबंध कायम करने की बात है, तो फिर वो एजेंसी कौन सी होगी, कौन इस काम को करेगा? तो दोस्तों, उसके लिए गवर्नर की व्यवस्था की गई, राज्यपाल की व्यवस्था की गई कि राज्यपाल होगा। अब आप देखिए कि वो पाल है राज्यों का, वो राज्यों में रह रहा है। मुख्यमंत्री उनकी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह से राज्यपाल काम करते हैं। हालांकि राज्यपाल भी नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो निर्वाचित नेता हैं उन्हीं की अहमियत होती है और मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, राइट। लेकिन चलिए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट्स हैं उन पर हम नहीं जाते हैं। तो राज्यपाल मूलतः उस तरीके से शक्तिशाली नहीं है, बावजूद इसके कि मंत्रिपरिषद की सलाह से वो काम कर रहा है। तो राज्य में है, मुख्यमंत्री की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से वो काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं है या राज्य के लोगों के द्वारा भी नहीं है। उसकी नियुक्ति करने वाली जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ना कहें, संविधान की भाषा में अगर हम बात करें तो होंगे वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राइट। तो अब आपको सीधे अब स्पष्ट वो चीज दिखाई देने लगी होगी कि जो राष्ट्रपति है, चूंकि वो राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी हुआ, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हुआ। और यहां देखिए, एक जो सबसे बड़ी जो बात है जिसको लेकर के लगातार विवाद उठता रहता है, और वो ये है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है। वैसे तो दिया हुआ है 5 साल, लेकिन उसमें यह भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति कभी भी उसे हटा सकते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि उसके उनकी इच्छा पर, कि जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, और जिस दिन राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे उन्हें राज्यपाल का पद छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल को इस तरह की कोई संवैधानिक शक्ति या संरक्षण प्राप्त नहीं है जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को है, जैसा कि हमारे इसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को है, जैसा कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर को है, कि आप उन्हें फिर हटा नहीं सकते, महाभियोग वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, आसान नहीं हटाना। लेकिन राज्यपाल को तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ हटाया जा सकता है। इस तथ्य की चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उन्हें आसानी से हटा सकते हैं तो अब स्वाभाविक है कि आप अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार कर रही है तो अपने पसंद से करेगी, अपने व्यक्ति को करेगी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो तो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है उसे, डेमोक्रेसी को संविधान के तहत चलाने वाली जो सत्ता है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही राज्यपालों को नियुक्त करेगी जो उनके अपने विश्वसनीय होंगे, और उसकी पूरी की पूरी डोर केंद्र सरकार के हाथ में इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तो अब सीधी सी बात हो गई कि जो राज्यपाल है वो बेसिकली केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कहा जाता है। तो अब जब केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वो राज्य में पोस्टेड है तो बट नेचुरल है कि वो राज्य को परेशान कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जबकि इस तरह की परेशानियां उठ खड़ी हुई हैं, और इसीलिए मांग किया जाता है, मांग की जाती रहेगी, कुछ ने कहा कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए, अलग अलग तरह के सुधार की बातें कही गई हैं, उसके लिए अब अवसर नहीं है। तो मित्रों, मैंने एक संघीय ढांचे की बात बताई, अब आप देख रहे हैं कि इस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है राज्यपाल के माध्यम से, वो उतने स्वतंत्र नहीं है, और राज्यपालों की रिपोर्ट के आधार पर बकायदे राज्य सरकारों को बर्खास्त भी किया गया है। अभी जो खासकर कर्नाटक में आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात आई कि किसे मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाया जाए शपथ के लिए, तो आप देखिए कि कितना क्राइसिस पैदा हुआ। वो जो क्राइसिस है उसके केंद्र में भी आपको राज्यपाल दिखाई देंगे, क्योंकि राज्यपाल ही अथॉराइज्ड है कि वो किसको आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस रूप में दोस्तों लगातार ये कहा जाता है कि राज्यपाल की वजह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार कमजोर हो रहा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्हें इस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज आपको बताई है, शायद इससे आपको कोई ऐसी दृष्टि मिल सके कि आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छे एनालिसिस करने की क्षमता हासिल कर लें। तो मित्रों, जहां तक अखबार की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मित्रों, मुझे दो ईमेल जो प्राप्त हुए हैं, खासकर मैं उन्हें पहले बताना चाहूंगा। एक प्रकाश तिवारी का है जो हमारे 8वें बैच के स्टूडेंट रहे हैं, गालिमपुर बिहार के हैं। उन्होंने एक बात लिखी है कि 8वें बैच के स्टूडेंट को मालूम होगा कि मैंने उन्हें योगा की 3 चीजें बताई थी जिन्हें आप 10 मिनट में कर सकते हैं, और उसका संबंध था हेडेक से और आपकी मेमोरी पावर से। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये किया और उनके हेडेक में बहुत आराम मिला, सिरदर्द उनको बहुत होता था और इसमें उनको बहुत आराम मिला, और उन्होंने स्पेशली ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप मेरे इस संदेश को मेरे 8वें बैच के सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दें कि वे भी ऐसा करें जिन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है, उन्हें भी इससे बहुत फायदा होगा। तो प्रकाश, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मैंने आपका संदेश आपके बैच के जितने भी मित्र हैं उन तक पहुंचा दिया है। एक मुझे मेल मिला है इलाहाक अंसारी का, जो कोरिया छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने बड़े प्यार के साथ लिखा है कि सर, मैं आपका जो AFEIS है और आपकी जो किताबें हैं उन्हें स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में जा जा करके इसके बारे में बताता हूं, और वो सब इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, इससे मुझे बेहद खुशी होती है। तो इलाहाक, आपके इस नेक काम के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है यदि वो उसका उपयोग करेंगे। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्हीं में से कुछ और दोस्तों के नाम हैं, हिमांशु शेखर, आप चतमा बाजार बिहार से हैं, डॉक्टर साम्या अंजुम, मनीष पंसेरिया, स्पर्श खंडेलवाल इंदौर से, धनंजय खत्री मुंबई से, प्रतिभा पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, और हेतराम प्रजापत, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।